वैकुण्ठं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्य लोकनाथ दास गोस्वामी आविर्भावनाथ तिरुभाव
तिरुभाव
तो शुद्ध लिखा दो कैसे देखा पड़ेगा और हमारे बीरा तिथि ना कि बीरा ना आविर्भाव बीरा तिथि बीरा तिथि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत रचना के पूर्व उसे आदेश लेने के लिए गए। मैं महाप्रभु जी का जीवन चरित्र लिखना चाहता हूँ, आप कृपा करके आदेश दें। तो उन्होंने कहा, मैं आदेश देता हूँ किंतु एक शर्त के साथ। ये देखिए शर्त के साथ, उसमें कहीं हमारा नाम गंद नहीं होना चाहिए, हमारी कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, तब मैं पूरा अपना आशीर्वाद दूंगा। नहीं कि मैं तो सब वैष्णवों का, मैं महाप्रभु से लेकर कृष्ण महाप्रभु के परिकरों का, उसमें जो उनका जीवन चरित्र जो है शुद्ध चरित्र मैं लिखूंगा, और ये सब हमारा मत लिखना, तो ये अच्छी बात है, किंतु आप आशीर्वाद होना चाहिए। जी जाओ आशीर्वाद देते हैं, बहुत सुंदर लोग, इसलिए उनके संबंध में कहीं भी नहीं लिखा। उनके संबंध में और भूगर्भ गोस्वामी के संबंध में नाम कहीं लिख दिया हो तो नाम लिखा है कि नहीं हमने याद नहीं है, किंतु उनके जीवन के चरित्र में कहीं कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती के भी पास गए तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा। पहले अपने प्रतिष्ठान के लिए कोई कुछ काम नहीं करता है, पहले के ग्रंथों में मैं ग्रंथ करता हूँ ये नाम भी नहीं देते थे। वाल्मीकि चरित्र में देखते हैं, वाल्मीकि जी का रामायण, उसमें कहीं भी उन्होंने अपने कलम से नहीं लिखा जो मैं इसका लेखक हूँ, नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने अपने आप कहीं नहीं लिखा, सुत गोस्वामी ने और सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा इस ग्रंथ के, उनकी समाधि ग्रंथ है। पहले के जितने लोग थे ऐसे ही थे, अपनी प्रतिष्ठा के भूखे नहीं। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल की प्रतीत रीति चोरी होती है, पांडुलिपि ग्रंथ चोरी कर लिया, आदि मध्य का कुछ बदल दिया और अपने नाम से छपवा दिया। आजकल लाखों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ पैसे दे दिए और अपना उसमें लिखवा दिया। पहले के ऐसा नहीं था, लोकनाथ दास गोस्वामी जी घृणा दबी सुनीच तरोपी सही सुन अमानी और मानव थे, इसके मूर्तमान रूप थे, बहुत ही भजन परायण भजन निष्ठ थे। शिष्य नहीं करूंगा इसकी प्रतिज्ञा उन्होंने कर रखा था, शिष्य नहीं किया, केवल विशेष परिस्थिति में एक शिष्य किया, वो किया नरोत्तम ठाकुर की कौल ग्रहण किया और उनको भी अपने यहाँ से हटा दिया। उसमें भी कुछ शिक्षाएं की बातें हैं, तुम ब्रज में भजन करने के अधिकारी नहीं हो, तुम जाओ। आज उनका तिरुभाव तिथि है, उनकी तिरुभाव तिथि है, उसके संबंध में वैष्णव लोग बोलेंगे और अंत में हम भी कुछ थोड़ा सा बोलेंगे।
बहुत सी बातें अपने अपने दृष्टिकोण से
होने वाली शिक्षाओं का उन्होंने कहा वर्णन किया। चौदह वर्ष चरित्र बहुत कम ही मिलता है, कभी उनके विभिन्न चरित्र के विभिन्न पहलुओं का इन लोगों ने अपना दृष्टिकोण का अच्छा। समय भी अधिक हो गया है, रात होने वाली, मैं दो एक शब्द कर महाप्रभु जी के ये प्रचार और कृष्ण लीला में मंजूला दी थी, किंतु भजन शिक्षा लेने के लिए जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी और गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु जी के प्रचार, ऐसे साधक भक्त के रूप में इनको देखा गया। हर बार छोड़कर के नवदीप ने महाप्रभु के पास जाए निभाई करने की कोशिश करते और उससे उनको बहुत प्रेरणा मिली। तत्पश्चात महाप्रभु जी के आदेश से सुबुद्धि राय के बाद ये सबसे पहले ये दो व्यक्ति हैं लोकनाथ गोस्वामी और ये लोग सबसे पहले ब्रज में महाप्रभु के आदेश से आए और उनके आदेशों का उन्होंने वृंदावन के लोग कृत्यों को उद्धार और शिव विग्रहों का प्राचीन है उनको प्रचार करना, सब साहित्य का प्रचार इत्यादि उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उसमें अभी बातचीत अभी चल रही है योगनाथ दास गोस्वामी लोकनाथ दास गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को कालिदुम का इसमें अपने अपने शुभानंद ब्रह्मचारी ने भी कहा उन्होंने लिखा और अपना अपना दृष्टिकोण अपने अधिकार से हम कहते हैं किंतु यथार्थ बात क्या जरूर इसमें इस पर मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहता हूँ। मुक्त पुरुष ये सभी लोग हैं, ठाकुर जी ने कुछ शिक्षाएं देने के लिए ऐसा आचरण करते हैं। भजन कर रहे थे पहले तो उनको शिष्य ही नहीं करते, बहुत चेष्टा की उन्होंने उनको आग्रह क्यों नहीं शिष्य कर लोगों को बहुत भजन में सहायता देनी नहीं चाहिए तो ये लोग हमारे जितने भी गोस्वामी है रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी यहाँ तक कि विश्वनाथ पर शिक्षा नहीं किया क्या शिष्य हमारे सूर्य भक्ति विनोद डालते हैं कितने शिष्य बहुत मुश्किल है दो चार और कई लोगों का शिष्य ही नहीं है महाप्रभु जी ने भी शिष्य क्यों नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि सभी के ये जगत गुरु है ये सब मंत्र दीक्षा से भी एक भजन पारायण का एक ऐसी चीज है इसमें भजन करने की प्रेरणा महाप्रभु जी ने किसी को हरिनाम दीक्षा का कोई संस्कार है नहीं किया किंतु करोड़ों लोगों को जो वैष्णव किया आज जो लोग दीक्षा लेकर के करते हैं उससे उसका प्रभाव अधिक हुआ। उसी तरह से हमारे सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी ने किसी को मंत्र नहीं दिया रूप गोस्वामी ने शायद दिया है तो जीव गोस्वामी को दे दिया और किसी को नहीं तो जगत के लोग उसको पूजा मानते हैं। इसलिए केवल मंत्र दे देने से ही काम नहीं होता, मंत्र देने से ही दीक्षा देने से ही काम, यदि शिष्य को भरकर के साधन नहीं करे और वो जो गुरु है साधन नहीं किए हो और लाख आदमी को भजन के लिए कहते हैं और वो दीक्षा भी लेते हैं, उतनी शक्ति नहीं है। और एक आदमी भजन में परिनिष्ठित होकर के और उसमें प्रतिष्ठित हो गया भजन, वो केवल कहते हैं जा तू भजन कृष्ण नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके दीक्षा क्या सब कुछ हो उसका प्रभाव हो सकता है। जहाँ जहाँ गए गुरु सनातन जहाँ ब्रज भाग में गए सब लोग उनको बड़े गोस्वामी छोटे गोस्वामी कर और उनके शिक्षाओं का असर पड़ता था, लोगों का जीवन चरित्र बदल जाता है। और आज हम जब लोग कहते हैं हजार शिष्य किया अपने प्रतिष्ठित नहीं कहा, हजार शिष्य में से तुम ये दो है जो भजन करता है केवल नाम मात्र के, यदि पूछे जैसे अच्छा आज सवेरे इतने सब शिष्य शिष्या हैं सवेरे से कितनी माला थी, उसमें बिरले ही हाथ उठेंगे जो हमने एक लाख। और यदि पूछा अच्छा 50,000 25, और यदि कहे जैसे अच्छा 16 बार किया 25,000 किया तो कुछ उठ सकते हैं, तब यदि कहूँ जैसे मन को निविष्ट करके अन्य विषयों की चिंता छोड़ करके किया तो देखेंगे एक भी है कि नहीं बहुत कम। किंतु ऐसे महापुरुष लोग नाथ दास को स्वामी तुरंत ऐसे कर देते जाओ जाओ जैसे नारद जी ने पहली को कह जाओ भजन कर, हरिदास ठाकुर ने पेशिया को कहा जो तू भजन कर हो गया ना, उसको मंत्र की दीक्षा भी संस्कार कराया फिर मुंडन कराया ना क्या किया यज्ञ कराया कहा जैसे तुम तुलसी का ये पौधा दे देते हैं इसकी सेवा करना और यहाँ पर तुम हरिनाम करना और कहीं पढ़ करके मत जाना, दिल्ली से मांगने मत जाना, तुम्हारे पास आए तो तुम्हारा सब कुछ और कुछ बस यही दूर की मन की क्या कैसे लोकनाथ दास गोस्वामी के गुरु कौन थे किसने बताया है दीक्षा आपका दिया था नहीं पढ़ी थे अपने संप्रदाय में रखेंगे या बात करेंगे आधुनिक बालकियों के दृष्टि से तो उनको बात करते हैं जो बात करेंगे वो पास नहीं। गुरु कर्तव्य क्या है पापन गुरु परंपरा क्या है इस चीज को समझना चाहिए, वो प्रतिशत मैं छोड़ रहा हूँ संक्षेप में दो चार बातें कहानी की। दूसरी बात लोकनाथ दास गोस्वामी जो भजन कर रहे हैं अष्टकालीन डिजाइन कर जो उस समय में समाधिस्थ होते हैं कि समाधिस्थ किसको करते हैं अष्टकालीन लीला में कैसी होती है बुझ करके हम कल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है सोच विचार करके ना समाधि में वो स्वयं प्रकट होकर के गुजरा चलती रहती है उसमें वो समाधि जान बुझ करके की जाती है ये समाधि नहीं है मैं गोपी हूँ जैसे आजकल बहुत से लोग मैं गोपी हूँ मैं अंकिदास हमारा ज्ञान प्रसाद है जग रहे और ऐसा कभी चिंतन कर और उसमें लाख प्रकार की चिंता और मैं उनकी सेवा कर ये एक प्रकार किंतु समाधि ऐसी नहीं भक्ति जुड़े मनसि संगत प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच देखा कि कृष्ण की लीला अपने आप प्रतीक्षा कर रहे कब आएगा वो माधव माधवपुरी और मेरी सेवा करेगा उनके पास में अपने आप लोकनाथ दास गोस्वामी के पास में ठाकुर किया कोई प्रयास नहीं किया ऐसे बिना प्रयास के एकदम समाधिस्थ हो जाएंगे जबकि बाहरी कहीं भी कोई चीज का ज्ञान नहीं होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु संख्या बहुत लंबी हो जाती उनको, दस हाथ लंबे हो जाते, कभी कभी कुल माकृति हो जाती, उसमें बाहरी ज्ञान रहता था कि नहीं, किंतु भीतर में क्या होता था, रास लीला में प्रवेश होकर के कृष्ण के साथ में लीलाएं कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, राधिका के उसमें बाहरी दोष नहीं होता, उसके बाद में अंतर बाह्य अवस्था और बाह्य अवस्था। आप लोगों ने जो बतलाया ये बाह्य अवस्था की बातें बतलाई, बाह्य अवस्था की बात और उनका विचार करके करा। यदि कोई वैसे ही अंतर अवस्था में कोई समाज में मग्न है तो वो कुछ विचार करेगा कि नहीं बाहरी बातों को, वो बाहरी बातों का विचार नहीं करेगा। उनको ये शिक्षा दे रहे हैं, उनके माध्यम से जगत को शिक्षा दे रहे हैं। देखो कृष्ण का भजन माने कृष्ण की सेवा है, तुमको उस अवस्था में मैं ले जाना चाहता हूँ, समाधि स्थिति अवस्था में। यदि तुम किसी को पानी पिलाने देखेगा, पिलाते से देखेगा, एक आदमी प्यासा, जैसे परीक्षित महाराज जी गए कौन ऋषि
स्वामी ऋषि,
उन्होंने देखा उनको, क्यों नहीं देखा उनको, देखा कि परीक्षित प्यासा आया है, उन्होंने देखा कि प्यासा कृष्ण का वैष्णव का और जगत के लोगों का वहां पर विचार नहीं है। यदि वैष्णव भी आ जाए, कृष्ण भी स्वयं ऊपर से आ जाए, वो समाज व्यक्ति उनको देखेगा कि नहीं, नहीं देखेगा। जैसे शुभ जी अपनी समाधि में थे, भगवान ने उनको दर्शन दिया और इसके बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर क्या हुआ, छटपटा करके खोजने लगे। तो वैसे उस अवस्था में समाधि में यदि व्यक्ति गुरु है और दूसरा कोई वैष्णव भी जाए, उसका गुरु भी जाए, देखेगा जो गुरु गया है तो उनकी सेवा करेगा, किंतु जो उन्होंने मारा हाथी हो गए और उनकी सेवा नहीं की क्योंकि वैष्णव थे, समाधिस्थ नहीं थे और वो उसी स्थिति में नहीं थे, उनको कर्म इत्यादि का ज्ञान था, शुद्ध वैष्णवता भी नहीं थी, इसलिए उनको किया क्योंकि वो ज्ञान देना करके भी उनको अनजान की भांति देखा, अनादर किया, इसलिए किंतु समाधि की अवस्था में यदि कोई वैष्णव भी वहां पर जाता तो वैष्णव भी उनका कोई अपराध देना कि उन करके हमारा आदर नहीं किया, इसलिए ये सब विचार हम अपने अधिकार से कर रहे हैं। किंतु यदि कहेगा तो उच्च अधिकार के बोल रहे हैं तो सब गड़बड़ी हो जाएगी, सब विचार करते हुए अपना कोई विचार उसको समझो, इसलिए वो जो कह रहा है आंशिक रूप में कुछ लागू हो सकता है कि वैष्णव को भी आए तो आ रहे हैं, अरे भाई समाधि अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, यदि अष्टाध्यायी लीला जैसे कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बतलाया वो रामचंद्र जी अपने स्वरूप में स्थित होकर के वहां पर गए, वृंदावन में आए, अपने गुरु सखी से मिले और उसमें शरीर वहां पर पड़ा था, तो वहां सब कोई वैष्णव भी आए तो उनका सत्कार करेगा, वैष्णव भी कोई आ जाए, लाख वैष्णव आ जाए, वो हल्ला भी कर रहे हैं, कान में जाएगा उनका, तो फिर तो उनको हाथी होना पड़ेगा। इसलिए ये सब विचार सिद्धांत से सार में जान करके उस समय इस चीज को तुम लोग समझो, भगवान का नाम करना, भगवान का नाम स्वयं कृष्ण, इस दृष्टि से तो भजन हरि नाम नहीं करेगा तो तुम्हारा नाम आपात है अथवा अपराध का, इसलिए नाम करते समय ये सोचो कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, नाम सेवा। उस समय साधारण ये सब लोग आए तो तुम्हारा बाह्य ज्ञान होने पर भी तुम सोचो कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा के कोटि कोटि सेवा मिल करके इसके बराबर के लिए होगी, इसके रिष्ट हो करके ठीक, किंतु उस समय यदि गुरु आ जाए और वो सहित उठ करके आ गया ये तो बात तो ठीक नहीं है। इन सब चीजों को परिप्रेक्ष्य में ये सब विचार करना चाहिए, जो भजन करना चाहता है या भजन करना चाहता है उनको इन सब विचारों को करना चाहिए।
हमारा जो प्रख्यात उन्नत अधिकारी का अगर हमारा बातचीत ज्ञान रहते उन्नत अधिकारी का अनुकरण करने जाएंगे लेकिन अभी तो हमारे ठीक नहीं है
किंतु इस विषय को सोचो जरा तुम भी अधिकारी नहीं
है
इसलिए अपने अधिकार के रक्षा तुम्हारा नाम अभी शुद्ध नहीं हो रहा नाम आवास इसलिए नाम करने के समय इधर देखता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे भाई इसको पानी पिला हरे कृष्ण हरे कृष्ण वो कुछ विचार नहीं करते दूसरे दंडक खड़ा कर उनकी दशा जैसी हमको हमारी दशा नहीं है
कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय दैतायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना ठाकुर जी भजन रहस्य में बतला रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक लेकर निर्व्याजं भज गुणनिधे पावनं पावना सत्तारज्जन मति रतितरां उत्तम श्लोक मौली उद्यन्तः अंतःकरण कुहरे हंत जन्नाम भानु आभासो अपि क्षपयति महापात भांतराशि तेरे सामने सिंधु का लिया तं निर्व्याजं भज गुणनिधे पावनं पावनानां पावनानां पावनं पावनानां गुणनिधे ऐसे जो गुणनिधि व्रजनंदन हैं उनका निर्व्याजं भज निर्व्याज निर्व्याज से भजन कर निर्व्याज माने क्या निर्बंध निष्कपट बहुत से अर्थ होते हैं एक तो निर्बंध और दूसरा निष्कपट निर्बंध माने क्या कुछ नियम है तो जरूरत नहीं परम पावन कृष्ण तहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करहो भजन कृष्ण परम पावन है निष्कपट रूप में उनका भजन करो निष्कपट माने क्या कृष्ण भक्ति की वृद्धि के अतिरिक्त कोई भी दूसरी कामना न हो तो ये और वो भी निर्धारित रूप में तैल धारा हो तब तो वो निर्बंध निर्व्याज हो सारे दिन में 24 घंटा में दूसरी कोई चिंता नहीं आने पाए और विशेष करके कोई भी कामना कृष्ण भक्ति के वृद्धि के अतिरिक्त न हो रहे। हम लोगों का है ऐसा कोई कामना है कि नहीं? लाखों प्रकार की अभी कामना है, देह संबंधी कामना, मन संबंधी कामना, भोगों की कामना, लाखों प्रकार की कामनाएं हैं। इसलिए ये कपटता है, इसलिए इन कपटताओं को छोड़ करके निर्बंध हो करके नियमित रूप में संख्या रूप में पहली स्थिति में भजन करें। जब ये दूर हो जाएगा तब फिर अपने आप रुचि होने पर फिर कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप निर्बंध से भी अधिक हो जाएगा। जारनाम सुज्जाभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप पाप अंधकार राष्ट्र, जिनके नाम का आभास भी जिस प्रकार से सूर्योदय होने के पहले सूर्य के रश्मियों के आभास से ही अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं एक तरह से। जैसे आजकल 6 बजे यदि सूर्य उदित हो तो करीब करीब 4 बजे के करीब में जिसको कहते हैं पौ फटना, पौ फटना कहते हैं ना, पौ फटना माने क्या, पौ माने अंधकार, अंधकार दूर होना। अभी सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, लाली भी नहीं दिखाई, किरण भी नहीं है आकाश में, भी लाली भी नहीं है उस समय, किंतु उस समय में प्रकाश थोड़ा सा होने लग जाता है, अंधकार दूर होने लगता है। ऐसे ही नाम रूपी सूर्य का आभास भी यदि हमारे हृदय में प्रवेश करे, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि, तो उसके सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। पाप और पाप का जो फल है, पाप और पाप कर्मों का या किसी भी कर्मों का जो फल है, ये सभी के को दूर कर देता है। अब इसको हम विचार करें, जिस प्रकार से नाम के आभास से अंधकार दूर हो जाता है, अभी धूप नहीं आई तो भी हो जाता है, ऐसे जो हम नाम कर रहे हैं हमारे पाप और पापों का जो फल है दूर हुआ कि नहीं? तो पापों का फल क्या है या कर्म का फल जन्म और मरण है, और पापों का फल उस जन्म मरण में दुख का होना और पुण्य का है सुख का। यदि हमारे अंदर में इस प्रकार के कुछ कर्म के फल हैं जिसको हम भोग रहे हैं, जैसे रोग, रोग क्या है, पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्म के कर्मों के और इस जन्म के कर्मों का फल। जैसे एक आदमी आग में असावधानी से जल गया, ये किस कर्म का फल है, पूर्व जन्म का है या इस जन्म का? असावधानी रहा वो कर्म का फल हो गया, जल गया। पूर्व जन्म का कर्मों का फल क्या है, अत्यंत जैसे टीबी है, कैंसर है, असाध्य बीमारियां हैं, मन में धन की कमी नहीं, लोगों की कमी नहीं, किंतु मन सब समय उद्विग्न रहता है, ये किस लिए? जन्मों के, इस जन्मों के लिए। तो यदि ये सब चीजें हैं, दुख हैं किसी कारण से, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक दुख हमें हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक यदि क्लेश हमें है, दुख है, तो क्या समझो, क्या समझो, ये अभी पातक ये ध्वल से नहीं हुए, हमारे अंदर में है और इसी कारण से हमें उस नाम में रुचि नहीं हो रही। इसलिए क्या करना होगा, जिनको सुकृति नहीं है वो सुकृति करें, जिनको सुकृति है वो सदगुरु पदाश्रय कर और कम सब भजन मार्ग जो बतलाए गए हैं इसमें निष्कपट होकर के करें। हम निष्कपट इस अवस्था में नहीं हो सकते। हमको रोग हुआ है कोई, हम इच्छा नहीं होगी जैसे ये रोग दूर हो जाए, होगी कि नहीं? तो कहाँ निष्कपट, हरिनाम कर रहे हैं, अमन मन करें जैसे यदि अच्छा हो जाता है, ये रोग हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मन अशांत है, इसे भी छुटकारा पाने की चेष्टा करें। इसलिए ये जब तक भावावस्था नहीं आएगी तब तक दुख कष्टों से अभिभूत रहेंगे हम, और जब भावावस्था आ जाएगी तब क्या होगा? अभिज्ञा क्लेश होंगे किंतु अभिज्ञात रहेगा, उसे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, उसको हटा देगा किंतु क्लेश रहेंगे। और भगवान का साक्षात्कार प्रेम के द्वारा जब होगा अत्यंतिक सदा के। अभी हम लोग साधक जो सच्चे होंगे वे विचार करेंगे अभी हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारे कर्मफल दुख इत्यादि ये सब दूर हो गए हैं कि नहीं? यदि नहीं तभी हमारा नाम अभी नामाभास भी नहीं है। क्या है? क्या है? अभी नामापराध है किसी से नामाभास में और नाम में नामापराध में ही अंतर है। दुख क्लेश परिपूर्ण मात्रा में रहेंगे और ये दूर नहीं होंगे। यदि नामाभास एक भी होता है, कभू नामाभास कभू सदाई नामापराध, ये सब जानवे भाई कृष्ण भक्तिर बाप। विचार करो सब देख करके हमारे अंदर में कर्म फल जो है इसके तरह से दुख कष्ट और ये सब आ रहे हैं कि नहीं, चित्त शांत हो रहा है, रोग है कि नहीं, कर्म का फल जो हम भोग रहे हैं वो है कि? यदि है तो अभी नामाभास नहीं हो रहा है, इसलिए नामाभास करने की चेष्टा होनी चाहिए। आज जिसको नामाभास हो रहा है कर्म फल इत्यादि सब दूर हो गया है उनको भाव लाने की चेष्टा करनी चाहिए। वो कैसे है? ऐसे छास्तक है कहे कृष्ण लीला क्रम, कृष्ण के लीला का क्रम बतलाया गया है, साधक कैसे कैसे उसमें प्रवेश करेगा, ये एकदम प्रारंभिक है। प्रारंभिक माने भजन रस का पहला भाग, पहला भाग क्या है? निशांत। अभी निशांत लीला का वर्णन कर रहे हैं ना? अभी कृष्ण जैसे सो रहे हैं गोपियां सो रही हैं, ऐसे अभी हम लोग अभी माया में सो रहे हैं किंतु थोड़ी थोड़ी सी अब कुलबुलाहट हो रही है उठने की, अंगड़ाई दे रहे हैं, आलस्य आ रहा है किंतु आंख बंद है, उस समय ये प्रथम भाग है, ये निशांत भजन का निशांत। निशा अंत हो गया, अभी अंधकार है, रात दूर हो गई है किंतु अंधकार है। एक इसमें यहाँ ते भजन क्रम लीला हो गया, इसमें भजन क्रम दिया गया है, शिक्षा शिक्षाष्टक भजन का क्रम। प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछु दई, प्रथमे सबसे पहले गुरु पदाश्रय का एकांत रूप में भक्ति पाने के लिए, शुद्धा भक्ति पाने के लिए गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरु सेवा करो, विषमेन गुरु सेवा, गुरु की सेवा करो। और कैसे भजन करेंगे उसे प्रवेश उनसे पूछ करके, और उनके साथ में और सब कामनाएं रहने पर भी हृदय से त्यागने की चेष्टा करो। रहेंगी हम कोई नहीं करेंगे, कोई भी कामना नहीं करेंगे, और कभी प्यास लगी पानी पिए ये तो इच्छा होगी, रोग हो गया ये दूर हो ये भी रहेगी। तुम झगड़ा नहीं करना चाहते किंतु कोई झगड़ा कर लिया जान बुझा करके टांग अड़ा करके आपको गिरा दिया, वो झगड़ा करना ही चाहते क्या करें? इस तरह से कहते हैं कि पहले देखो, पहली स्थिति में अनर्थ भरे पड़े रहेंगे और उसमें भजन करना आरंभ करो। किछु दिन पहला श्लोक क्या? चेतो दर्पण मार्जन भव महाता भाग निर्वाह श्रेय कैरव चंद्रिका, ये भजन के क्रम है। और इसी को इसमें जो सात चीजें हैं ये आगे के 7 श्लोकों में उसका वर्णन किया गया। आ रहा है समझ में? इसमें 7 स्थितियां बतलाई गई। चेतो दर्पण माध्यम भव महाकावाद निर्वाण श्रेय कैरव चंद्रिका विकट विद्या वधु जीवन अनंदाम बोधि वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन सर्वात्म संपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में निमज्जित। चेतो दर्पण मार्जनम के लिए ये पहला दूसरा श्लोक क्या नाम नामकारी अवतारी। इसी तरह से सबका क्रम समझो। इसके बाद में द्वितीय श्लोक थे हौ प्रवीण। 4 श्लोक क्रमशः भजन पक्व कर। 4 श्लोक मैंने प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय त्रिनादपि सुनीच अन्नजन पढ़ करके मुखस्त करने के लिए नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? प्रतिष्ठित होने के लिए। त्रिनादपि सुनीच तीन की अपेक्षा भी तीन। श्लोक मत देखो तो जो कोई कुछ कहता है तो तुम क्या करता है, ऐसे तो नहीं करता है, गुर्राता तो नहीं है। दुर्बल होने पर भी एक आदमी बहुत दुर्बल है और एक आदमी बहुत बलिष्ठ है। बलिष्ठ आदमी ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो क्या करेगा जो दुर्बल है? यदि हम कुछ कहते हैं तो और मारेगा, तो इसलिए वो देख रहा है ऐसे। आपने मारा? यदि हमको बल होता तो हम दिखला देते। या अब सोचता है कि इस अवस्था में हम किसकी शरण ले करके इनको हम दुरुस्त करें। यह त्रिनादपि नहीं है सुनिश्च। त्रिनादपि सुनिश्च मैंने क्या? बलिष्ठ होने पर भी शांत प्रशांत रूप से उसे क्षमा करके हरिदास ठाकुर जैसा, तब तक वो त्रिनादपि। तो ये अपने जीवन में प्रैक्टिस करे। जिसने ये नहीं किया और ऊपर की सीढ़ी के वाला जो काम है वो कर रहा है तो क्या होगा? तो नीचे की सीढ़ी मजबूत नहीं हो तो क्या होगा आगे? जो त्रिनादपि श्लोक नहीं करेगा नाम में रुचि इत्यादि भी नहीं होगी और नहीं क्या वो कविता सुंदरी नाथन इसकी भी आसक्ति नहीं छोड़ सकेगा। इसीलिए ऐसा होता है साधारण कर्मी मार्ग में लोगों में भी ऐसा देखा जाता है। बड़े बड़े विद्वान होते हैं। एक विद्वान थे एक भामती टीकाकार। राजा ने देखा ये बहुत बड़े भारे विद्वान हैं। कश्मीर में रहते थे, बाहर से लोग विद्वान लोग गए, देखा ये बड़े गरीब, घर में छप्पर तक नहीं, खाने के लिए एक थाल और लोटा भी नहीं, घर में कोई वस्तु नहीं है, कहीं से स्त्री उनकी भिक्षा ले आती है थोड़ा सा बना करके उनको दे ले, उसमें भी आधे पेट खा करके और आधा उसके लिए रख दे, कपड़े चतड़े भी चितड़े। भाग के विद्वान लोग उनको दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने देखा ऐसा बड़ा विद्वान और ऐसी इसकी दशा, वो राजा के पास में गए। एक ऐसे विद्वान का आप आदर नहीं करते और कुछ नहीं व्यवस्था करते? नहीं मैं क्या करूँ, आप जो कहिए वही करो। मैं सब चेष्टा करके हार गया। तो उन्होंने राजा ने एक ताम्र पत्र लिखा और उसमें एक राज्य भूखंड उनको दे दिया, स्वर्ण की मुद्राएं उनको दी, ये आप उनको हमारी तरफ से एक राजा की पदवी जैसा उनको दे दी और राजा का राज्य भी दे दिया। वो लोग बड़े खुश हुए, खुश होकर के उस विद्वान के पास में सोचा ये देख करके बड़े प्रसन्न होंगे और इनका दारिद्र दूर हो जाएगा, बड़े प्रसन्न होंगे। और जैसे उनका वो ताम्र पत्र दिया गया एकदम क्रोध से उनकी आंख लाल हो गई। हैं राजा का इतना साहस ये हमको वो धन देगा और इस प्रकार का प्रस्ताव करेगा। अपनी स्त्री को कहा अपनी चटाई और हमारी पुस्तकें ले लो और इस राज्य से हम नहीं रहेंगे। उन लोगों ने देखा अरे ये क्या, ये इतनी संपत्ति हम लोग उसके लिए ललचते हैं और इसको राजा ने दिया और ये लिया अस्वीकार करके इसके राज्य को जा रहा है। और राजा बाहर से आकर के पर्दे की आड़ से ये देख रहा। तो जब चलने लगे तो उसके चरणों में आकर के, महाराज ये मेरी गलती नहीं, इन लोगों ने, उनको विश्वास नहीं था, इन लोग हम पर शक कर रहे थे, इसलिए मैंने किया, हमारा दोष त्रुटि क्षमा किया जाए, हमारे राज्य से आप मत जाइए। हम वैष्णव में ऐसा है, रूप रघुनाथ में तो ऐसा था, जयदेव गोस्वामी इत्यादि का भी, सभी हमारे गोस्वामी लोग ऐसे रूप सनातन जीव गोस्वामी सब। यदि ऐसा होगा भाई तब तो वो होगा उपलब्धि, और नहीं तो नहीं। इसलिए हम लोग अभी निष्किंचन नहीं हुए हैं, अभी भगवान की सेवा के नाम पर हम अभी ले रहे हैं। भगवान की सेवा की कमी है, यदि हम मान लिया कि एक मंदिर नहीं बनाए तो भगवान की सेवा कमी हो जाएगी ना, क्या होगा। हम जो अनाधिकारी हैं इस चीज को नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसा कर। रूप सनातन जी ने जो प्रचार किया हम लोग कर सकते हैं, किंतु मन नहीं मानता है अनाधिकारी का, इसलिए सोच रहे हैं जब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो जहाँ पैसा रहेगा वहाँ पर दुश्चिंता जरूर रहेगी, किसी न किसी रूप में जरूर रहेगी। पहले भजन करना है तो निर्व्याज भजन करो, विशेष करके त्यागी हम लोग। महाप्रभु जी के पास में क्या संपत्ति थी संन्यास लेने के बाद में? डोर और कॉफी, और कुछ था उनके पास में? कुछ कल के खाने के लिए हरि टिकट भी नहीं रखो। सनातन गोस्वामी को वैसे ही, तो देखो कैसे हो करके हम भजन कर रहे हैं। तो इसलिए भजन की उपलब्धि कैसे हो, बड़ा मुश्किल। पंचम श्लोक तेन यद्धते हवा, ये चार तक हो जाएगा ऐसा जो करें, तो पांचवा श्लोक आया क्या? अई नंद तनुज किंकर पतितं मा विषमे भवम कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृशम करें। ये श्लोक है सिद्ध देह राधा पादाश्रय, ये सिद्ध देह का अभी आया। कब आया? नाम जब करने लगे, नाम की कृपा हुई दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में तृणा दपि सुनी करोड़ रुपये संहिता में प्रतिष्ठित हो गए, और चौथे में क्या हुआ? वो सारी ये चीजें दूर हो गई, सारे अनर्थ भी इसी में दूर हो गए, यही तो अनर्थ है। ये जब दूर हो गए तो पांचवा श्लोक भजन करते 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 ये श्लोक है सिद्ध देव, क्या हो गया सिद्ध देव। सिद्ध देव, सिद्ध देव क्या? राधा पादाश्रय, श्रीमती राधिका जी के चरण का आश्रय जिस शरीर के द्वारा लिया जाता है वो सिद्ध देह की अनुभूति होगी अपने आप, कल्पना मात्र से नहीं होगी। आज का कोई व्यक्ति आया बस उसको बाबा जी का लंगोटी वो दे दिया, क्या डोर कॉपी और गोपी भाव दे दिया, ये तुम गोपी है राधा कुंड में, हाँ बरसाने में जन्म है, और इसे काम नहीं चलने का। अभी काम क्रोध है दास या तारला तिखा है, क्या भ्रमित है भ्रमित है यदि साधु, इन चीज़ों को समझ करके अग्रसर होना है। आरम्भ क्रिया क्रमे उन्नत उदय, यही श्लोक सिद्ध देहे राधा पावर, अनुभूति होगी अपने आप। और इस क्रम को छोड़ करके जो करेगा आगे बतलाएंगे। ये आरम्भ क्रिया क्रमे उन्नत, उन्नति उदय, उदय होता है, चेष्टा करने से नहीं होगा, कल्पना करने से। छह श्लोक भजिते अनर्थ दूर गए, छह मैंने क्या नैनंगल दास, अपने अनुभूति होगी सिद्ध देह की, और उस सिद्ध देह के द्वारा मानस भजन करते 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 सारी अनर्थ जब दूर हो जाएंगे, नैनंगल दास बदनंग गदगद रुद्धया कुलकर निचितंग बपुह कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, तब ये होगा नैनंगल दास। उसके पहले ही यदि कोई रोता है तो वो रोना अभ्यास अथवा कोमल हृदय अथवा बनावट, बनाओ। छह श्लोक भजन करके अनर्थ दूर गेला, तबे ज्ञान जान सिद्ध देहे अधिकार होइला। जब ये नैनंगल दास धारया होने लग जाएगा, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या चातानुरागो दित चित्त उच्चै हस तथो रोगति रौति गायति उन्मादय लोक बाच्य। जब ऐसी दशा हो जाएगी तब कहते हैं, तब समझो जानो, तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हो गया। तब सिद्ध देह कब हुआ? नैनंगल दास भी पार कर गया, और जब नैन अपने आप नाम लेते ही कोई धाम में कृष्ण जन्म या लीला स्थली देखा, महाप्रभु की लीला स्थली देखा, रामानंद की संवाद स्थली गोदावरी देखा, अथवा बंसी बट देखा, राधा कुंड देखा, और देखते ही नैनंगल दास सुधारया और गदन बदन गदगद रुद धया गिरा उनका निचित बपुह कदा पवना। अतः ये क्या अनुभव इत्यादि जब देखेंगे। आप इस समय में सिद्ध देह में अधिकार अब हो रहा है क्या?
उदय और अधिकार हमने बताया, सिद्ध उदय होगा,
कोई अधिकार हुआ तभी तो, पहले तो अधिकार हो और तब फिर उदय होगा, पीछे पीछे उधर। अब सिद्ध दे भावना करने का अधिकार हुआ, उसमें भावना करें, अब भावना करते करते फिर वही उदित होगा, पहले भावना हो। भावना कैसे करेगा? कभी मान लो कि हठात भजन करते करते हठात देखा, कभी कृष्ण का रूप देखा, कभी अपना देखा, इस रूप में हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए इस अवस्था में होगा, छठे स्थिति। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, अधिकार ये अधिकार नहीं हुआ, अनर्थ दूर नहीं हुए, नैनंगल दास उधारिया नहीं हुआ, और अपना सिद्ध देह सोचते हैं कि मैं गोपी हूँ, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे। विपर्यय बुद्धि जन्मे शक्ति रो अभावे, विपर्यय बुद्धि जन्मे शक्ति रो अभावे, उसमें विपर्यय बुद्धि हो जाती। विपर्यय माने क्या? विपर्यय क्या हुआ? विपरीत बुद्धि माने कृष्ण और राधा जी के चरणों में प्रीति होने के बदले कामुकता है, लौकिक स्त्री पुरुष का व्यवहार के प्रति आकृष्ट होकर के वहां से गिर जाएगा, जो कुछ था भी वो भी विपर्यय हो गया। शक्ति अभाव सावधान है, क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो, यदि सिद्धि पाना चाहते हो, यदि सिद्धि पाना, जिसको भजन की लालसा है, साधु रो चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ, रूप सनातन आदि जो साधु हैं हमारे संप्रदाय, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, प्रभुपाद इत्यादि जो हैं, उनका चरित्र देख करके अपने बुद्धि को शुद्ध करो, जैसा उनका, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, पिताजी ने कुछ भेजे रुपए, दो नौकर भेजा, एक ब्राह्मण भेजा, रसोई बना करके खिलाएंगे, नहीं लिया, विषय का अन्न नहीं लेंगे, फिर छत्र में भोग, छत्र में रसोई वो लेने लगे, वहां पर भी सोचा ये वेश्यावृत्ति है, वैश्यावृत्ति मैंने वो आएगा तो देगा, वो आएगा तो देगा, उसको भी छोड़ दिया। फिर क्या किया? यहाँ पर गायों को खाने के लिए सड़ा हुआ अन्न, ठाकुर जी का मान अन्न जो निकलता है वो जहाँ पर नाली से बहता है उसी को धो करके खाए, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कुछ थी एकदम, अच्छा लालसा कोई थी, स्त्री के प्रति कोई आकर्षण था, परम अस्पराशी सुंदरा सुंदरी से सुंदरी स्त्री, और उसे छोड़ दिया। धन की लालसा उनको, यहाँ उनको यदि 200-500 रुपये दे दो तो हम जैसे पॉकेट में ले लेते हैं, वो लेते लेते तो बतला हमको कैसे प्रेम होगा, इसलिए उनको प्रेम होगा ना, इसलिए सब आकांक्षाएं दूर होगी, तब निष्कपट होकर के निष्किंचन होकर के जब भजन करेंगे इसके लिए तब प्रेम होगा भाई। तो सिद्ध दे पे क्रम भजन करिले, सिद्ध दे पा करके क्रमशः जब भजन हम करेंगे, अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले, तब अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन करके ये कह रहे हैं, ऐसे नहीं बिना अनुभव करके नहीं लिख रहे। हम लोग लिखते हैं 100,000 नाम प्रतिदिन करना, विश्व में आसक्ति मत रखना और उपदेश देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं आचार करके उसमें प्रतिष्ठित होकर के कहते हैं, इसलिए इनके कहने का फल होता, हम लोगों का फल उतना नहीं। इसलिए हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए जिसमें जो जो कुछ कहा जा रहा है उसमें हम प्रतिष्ठित सचमुच में हो सके। कठिन है तो भी यदि शुद्ध इच्छा होगी, भक्ति की इच्छा होगी तो जरूर हम कर सकते हैं। सिद्ध देह देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख। अष्टकाल सेवा सुख माने क्या? कृष्ण की या महाप्रभु जी की निशांत लीला, उसमें चिंतन करने में साक्षात अनुभूति, प्रातः काल का, पूर्वाह्न का, मध्यान्ह लीला का, राधा कुंड इत्यादि, और फिर अपराह्न गायों को लेकर के आ रहे हैं, सब लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। इसके बाद में हाँ शायन गायों को घर में ला करके उनका दोहन इत्यादि करना, और घर में आना उस समय की कितनी लीलाएं हैं, और इसके बाद में घर में आकर के भोजन इत्यादि करना, भोजन में कितना रंग, और इसके बाद में आ गया प्रदोष, प्रदोष के बाद ही में आया मध्यान्ह, और मध्यान्ह के बाद में फिर आ गया वो उसको खाने पीने की सुध नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी से बात की भी जरूरत नहीं, और एकदम बैठे अपने भजन में लगे। इनके श्वास से जगत में प्रचार होगा, श्वास से जो आ जा रहा है ना इसी से उनका जगत में प्रचार हो जाएगा, पृथक रूप में उनको प्रचार करने की जरूरत। हम लोग प्रचार करेंगे, विश्व भर घुमाएंगे और खूब प्रचार कराए, उसमें से कोई एक बिरला श्रद्धालु मिला कि नहीं मिला, हम तो देख रहे हैं एक भी श्रद्धालु मिलना जो ठीक से भजन हम जैसा कर रहे हैं ऐसा मिल जाए। पैसा दे देना दे देंगे, खूब सहज है, जो कुछ मांगो वो दे देंगे, वो सहज है, 10,00,000 रुपया मांगो वो दे देंगे, किंतु हृदय को शुद्ध करके और निष्कपट होकर के इस तरह से निर्बंध होकर के भजन करो ऐसा कोई मिलता नहीं, लाखों में से भी एक, बहुत कठिन। विशेष करके जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, रागानुगा भाव भक्ति का जो विचार है, ये तो बहुत मुश्किल है, दुर्लभ से भी परम दुर्लभ है, और उनके उनकी छाया से भी, उनके अंगों में जो हवा लगी और उसे किसी को लग गया तो उसी में वो उसको हो जाएगा। ये हमने देखा स्वामी जी ने कितना अथक परिश्रम किया, हरिनाम कर रहे हैं, त्याग वैराग्य भी है, सब कुछ है, किंतु भजन पर आए हैं, तत्वों को जान करके भजन पर आए हैं, परस्पर की निंदा इत्यादि, झगड़ा भी, अर्थ के प्रति प्रचुर लालसा, इधर भी हम लोग देख रहे हैं भारतवर्ष में भी। इसलिए भजन परायण होना, ऐसा निष्कपट होना बड़ा भारी कठिन है। हम लोग समझते हैं कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, अभी सर्दी खांसी हो गई तो दवा की जरूरत होगी, तो ये कहाँ से, देखो उसके अभी। इसलिए कहते हैं सिद्ध देह पे क्रमे भजन करके, अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले, शिक्षाष्टक चिंतन कर स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। उद्दीपन माने क्या? उद्दीपन हम उसको ले आएंगे ऐसा नहीं,
अपने आप
उसका उद्दीपन होगा। सकल अनर्थ जावे पापी प्रेम धान चतुर्वर फल्गु प्राय हवे अदर्श चतुर्वर इत्यादि सब क्या होगा, फल्गु प्राय हवे अदर्श, सभी दूर हो जाएंगे उस भजन के प्रभाव से। हम लोग अभी नाम करते हैं और कितने प्रकार के कष्ट दुख क्रोध राग द्वेष ये सब भरे पड़े, तब हम समझते हैं कि अभी नमाभास भी नहीं हो रहा है, यदि कुछ कर भी रहे हैं तो नमापराध हो रहा है। इसको देख सुन करके नमाभास करने की चेष्टा करें और इसके बाद में शुद्ध नाम को, यदि ये करना चाहते हैं तो सद्धर्मस्य अवबोधस्य येषां निर्बन्धनीमति अचिरादेव सर्वार्थः सिद्धतेषां अभीष्टः। सद्धर्मस्य अवबोधाय, सद्धर्म को जानने के लिए, सद्धर्म ने भक्ति को जानने के लिए, निर्बन्धनीमति सह कृष्णनाम कर, निर्बन्धनीमति सह कृष्णनाम कर अति शीघ्र प्रेम फल से ही नाम में धरे। निर्बन्धनीमति निर्धारित कर दिया, हम आज से गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरु सेवा करते हुए सारी सेवा करते हुए हम आज से 100,000 हरिनाम करेंगे। 100,000 करने के बाद में आप सोए भी रहेंगे तो नाम क्या निकलेगा, सोते 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 में हरे कृष्ण जब उठेंगे तो कहेंगे नाम हो रहा है, धीरे 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 सब चिंताएं समाप्त हो जाएगी। निर्बंधनी निर्धारित रूप में महाप्रभु जैसे अपने कमर के डोर के ऊपर में गांठ दे करके उससे नाम संख्या कर देते, उस समय में ये तुलसी माला भी प्रचलित नहीं थी, इस तरह से वो करते थे निर्बंधनीमति के। हम इसे कम नहीं करेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे पीछे, पहले नाम को हम करें। हम क्या करते हैं, पहले ये काम कर लो तब फिर भगवान का नाम, पहले बच्चों को स्कूल भेजो, घर का काम कर लो, पति जब ऑफिस चले जाएंगे तब सबको खिला पिला करके नाम करेंगे। तो इतने में कोई बाहर का आदमी आ गया, बस उसे मिलने में अच्छा ये चला जाएगा, तब तक एक दूसरा आदमी चला, इतने में दोपहर हो गई, कहा गया अब शाम को कर लेंगे, बस खा पी लिया, फिर शाम को आया तो कोई मिलने आ गया, कोई कुछ दर हो गया, बच्चे आकर के रोने पड़ने लगे, बस उस समय में सारा दिन नहीं हुआ। शाम को अच्छा रसोई बनाने के बाद में रात में करेंगे, रसोई बना करके खा पिया, इतने में नींद आ गई, बस हो गया, थोड़ा सिर में दर्द हो गया, कोई कुछ हो गया। निर्बंधनीमति के साथ में करो, नहीं निश्चित रूप में उसका कोई रख दिया इतना करेंगे ऐसे करेंगे इस रूप में करेंगे, 100,000 हरिनाम करेंगे कि 50,000 नाम करेंगे, एक निर्धारित कर दिया और प्रतिदिन हम इतना स्तव स्तुति करेंगे ही, इनको हम अपने जितना एक रख लिया वृंदावन के कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, लीला स्थल है, कृष्ण के जितने भी परिकर हैं, सखा हैं, सखियां हैं, नंद बाबा हैं, जसोदा हैं, विश्वभानु बाबा इत्यादि हैं, पूर्णिमा हैं और जितने परिकर हैं, मैं सबका गुरु परंपरा प्रारंभ से गुरु जी से अपना ले करके और ब्रह्मा और इसके बाद में जितने हमारे ये सब हैं सबको प्रणाम करूँगा। यहाँ प्रणाम करके वहाँ नवदीप धाम में जितने हैं लीला स्थली और सब परिकर उनको, फिर पहुँच जाओ छत्र और वहाँ पर जितने महाप्रभु के परिकर हैं उनको प्रणाम, लीला स्थलियों को प्रणाम, करते करते 1-2 घंटा इसी में चला गया और इसके बाद में जो जो स्थान हम जहाँ हैं जो जो दर्शनीय हैं उनको प्रणाम कर। भागवत का कुछ श्लोक हम जरूर प्रतिदिन देखें, उनकी टीकाओं को देखें, चैतन्य चैतामित पढ़ेंगे, ये स्तवावली स्तवमाला के कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उनको धारण करने की चेष्टा करें उसी के अनुरूप।